सफ़र की चार तारीख 1441 सन हिजरत आपकी खिदमत मुक़द्दस में उनवान है मौजज़ात इमाम हसन अलैहिस्सलाम और तारीख़ अज़वाज मासूम। अपनी गुज़ारिशात पेश करते हुए कुछ मौजज़ात का बयान भी हो रहा है, कुछ इमाम के अक़वाल भी बयान किए जा रहे हैं और कुछ इमाम अलैहिस्सलाम के अज़वाज के तस्करे को भी शामिल मजलिस किया जा रहा है। गर्चे उनवान वसी है तारीख़ अज़वाज मासूम, तो पूरे चहरदे मासूमीन में 13 मासूमीन और 13 में से 12 का यकीन अज़वाज के हवाले से, यानी कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में। तो ये बहस नहीं हो सकती, इसलिए कि इख्तलाफात रिवायात में ज़्यादा हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम अज़वाज फरमा चुके हैं, तो आपकी जो अज़वाज मुतहरात उनके नाम क्या हैं, उनके ख़ानदान के हालात क्या हैं, और अगर खुदा ने उन साहिब औलाद किया तो औलादों का सिलसिला क्या है। कहीं पर तस्करा है जैसे कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का जुमला है, मस्जिद सहला के बाब में, मस्जिद सहला के बारे में इमाम फरमाते हैं, ये गोया कि मैं देख रहा हूँ कि इमाम कायम अलैहिस्सलाम अपने अहलो आयाल के साथ मस्जिद सहला में उतर रहे हैं। तो अहलो आयाल का एक हवाला जुमे के दिन की ज़ियारत में भी है, जो आखिरी इमाम की ज़ियारत पढ़ी जाती है, तो मैं इसलिए उसको अलग करते हुए गुंजाइश मेरे पास है कि हम 12 मासूमीन के अज़वाज के हालात को बयान कर सकते हैं, लेकिन ये अशरा मखसूस है इमाम मुश्तबा के हवाले से। आपको करीमे अहले बैत के नाम से याद किया जाता है, और जितनी किताबें उठा के देखिए तो आपके सुलहों के वाकयात इतना गालिब हो गए कि आम वाकयात पर, आम मौजज़ात पर, या रावियों को इतना इश्तबा रहा कि एक ही मौजज़ा दो इमामों से मंसूब कर दिया। मौला हसन और मौला हुसैन अलैहिमुस्सलाम दोनों इतना साथ साथ रहे कि जैसे यक जान दो कालिब, तो रावी को समझ में नहीं आया किस मौजज़े को मौजज़े हसन कहे और किस मौजज़े को मौजज़े हुसैन कहे। और ऐसे मौजज़ात आपको यकीनन मिलेंगे जो दोनों के मुश्तरक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इन तमाम मसाइल को देखते हुए आइए आपकी खिदमत में सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाया जाए। इमाम के मौजज़ात का एक ताल्लुक बाकी तमाम मासूमीन के साथ मरबूत है, यानी एक तरह का ही मौजज़ा जो मासूम अव्वल की बारगाह से मिला वही चलते हुए आठवें इमाम तक की बारगाह से मिला। क्या मौजज़ा है जो आगे तक चला है? उसमें एक ऐसी खातून का तस्करा है इसे मुख्तलिफ नामों से याद किया गया, अगर जो मैं आज पढ़ रहा हूँ यह उम्मे असलम। उम्मे असलम एक खातून जनाब उम्मे सलमा के घर, उम्मे सलमा अल्लाह के रसूल की शरीक हयात, तो उम्मे असलम उम्मे सलमा के घर आई हैं। पूछा कि अल्लाह के रसूल कहाँ तशरीफ़ रखते हैं? उम्मे सलमा फरमाती हैं कि किसी काम से बाहर तशरीफ़ ले गए हैं, आप बैठिए अभी आते होंगे तो आपको ज़्यारत नसीब हो जाएगी। जब अल्लाह के हबीब पलट के वापस घर में आए तो उम्मे सलमा के हुजरे में उम्मे असलम को पाया कि मुलाकात के लिए खातून आई हुई। अल्लाह के रसूल की खिदमत में कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके बाद आपका वसी कौन होगा? उम्मे असलम का सवाल। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरा वसी ज़िंदगी में भी और मेरे बाद भी मैंने मुशख्खस और मुअय्यन कर दिया है। कहा या रसूल अल्लाह मेरे लिए आप बता दीजिए कि आपके वसी की पहचान क्या होगी? अल्लाह के रसूल ने वसी का नाम नहीं बताया बल्कि आगे दस्ते मुबारक बढ़ाकर ज़मीन से एक पत्थर को उठाया, एक कंकर को उठाया, या पत्थर या कंकर, और उठाने के बाद अपने दस्ते रिसालत में लिया और उसे ऐसा कर दिया कि जैसे पाउडर बन जाता हो। पत्थर को पाउडर में तब्दील कर दिया। मैं सोचता हूँ इतना नरम हाथ था पैगंबर का, शायद आपकी मुलाकात किसी बड़े अजीम आलिम से हुई हो। जितना तकवा बुलंद होता है, जितना इरफान ज़्यादा होता है, उतना उनके हाथों की नरमी अलग से महसूस होती है। लगता है रोई के गाले हैं, हाथ नहीं हैं। मैं क्या नाम लूँ, क्या नाम छोड़ दूँ, आगाए बहजत का नाम लूँ तो शायद आप सबके अजहान मुतवज्जे हो जाएं। कैसे नरम व नाजुक हाथ, अल्लाह के रसूल के हाथ कितने नरम व नाजुक होंगे? इतने नरम व नाजुक हाथों में, और आपका तरीक़ेकार ये था कि जब कोई आपसे आकर हाथ मिलाता था तो आप अपना हाथ खुद से पीछे नहीं करते थे जब तक कि सामने वाला अपना हाथ पैगंबर से छुड़ाना न चाहे, तब तक पैगंबर उसका हाथ नहीं छोड़ते थे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आप खूब समझ रहे हैं, आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में हाथ मिलाना अलग है, शेक हैंड अलग है। अब तो कोई बहुत अगर आप पर रहम करे, एहसान करे, तो एक हाथ आगे बढ़ाता है। अब आप समझाइए कि मुसाफिहा दोनों हाथों से होता है, एक हाथ से नहीं। ये कब से अंग्रेजों के गुलाम बनने का मिजाज बन गया, एक हाथ से हाथ मिलाओ शेक हैंड है, मुसाफिहा नहीं है। मुसाफिहा हमेशा दोनों हाथ से होता है। और सरकार ख़त्म ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शेक हैंड नहीं करते थे, मुसाफिहा करते थे। और मुसाफिहा करने की बरकत ये कि जब कोई दो मोमिन आपस में हाथ मिलाते हैं और ईमानी मोहब्बत की गर्मी जिस मोमिन में ज़्यादा होती है, उस गर्मी से खुदा फरिश्ते खल्क फरमाता है, जो इसके लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं, खुदा का जिक्र करते हैं, इसके नाम आमाल में लिखा जाता है। तो जब कभी ये तो हाथ मिलाइए ही नहीं, शेक हैंड करना मुसाफिहा का एवज़ नहीं है, इस तरह हाथ उठाना सलाम का एवज़ नहीं है, ऐसे शेक हैंड करना मुसाफिहा का एवज़ नहीं है। सुन्नत पे पूरा अमल कीजिए वरना छोड़ दीजिए, कि इसमें तकब्बुर की अलामत पैदा हो जाती है। एक बेचारा मोमिन सामने से दोनों हाथ बढ़ाए हुए और आप अपना एक हाथ बढ़ा के उस पर एहसान कर रहे हैं कि तू इस काबिल है, और यही शख्स मुतकब्बिर जब किसी बादशाह से मिलने जाएगा, जब किसी वजीर से मिलने जाएगा, तो दोनों हाथ बढ़ाएगा, जबकि वो बादशाह या वजीर एक हाथ आगे बढ़ाएगा, हो गए जलील। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गए। हम चले थे उम्मे असलम जो उम्मे सलमा के घर में थी, अल्लाह के रसूल से वसी का सवाल कर रही थी, और आपने वसी के बयान के लिए एक अलामत रखी, ज़मीन से कंकर को उठाया या पत्थर को उठाया, अपने दस्ते मुबारक की गर्मी से, अपने दस्ते मुबारक के मौजज़े से उसे बिल्कुल पाउडर बना दिया। रिवायत आगे बयान नहीं करती कि फिर अल्लाह के रसूल ने उसे गूंधा। अल्फाज क्या हैं, जैसे आटा गूंदते हैं, तो क़िबला आटा गूंदने के लिए पानी चाहिए होता है, तुम आटा गूंदो पानी के मोहताज, मोहम्मद पानी के मोहताज नहीं है। पहले पत्थर को पीसा, पीस कर अपने हाथों की जुम्बिश के ज़रिए से उसे गीला कर दिया, और गीला करके बिल्कुल जब वो आटे की तरह हो गया, गोली बना दी गई, उस पर अपने अंगुश्ते मुबारक, अपनी जो आप पहने हुए थे खातम अंगुश्तुरी मुबारक, उससे आपने उस पर मोहर लगा दी, और दे के फरमाया उम्मे असलम को, उम्मे असलम मेरे बाद जो वसी होगा, जो मेरी ज़िंदगी के अंदर अभी मौजूद है, जो मेरी विसायत का ऐलान करे उसके पास चली जाना, वो तुम्हें ऐसा करके दिखाए, समझना मेरा वसी है। उम्मे असलम कहती हैं मैं रसूल खुदा के हुजरे से बाहर आई और बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के सीधा हुजरे जनाब सैयदा में चली गई, और मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ारा से मुशर्रफ़ हुई। इमाम को सलाम अर्ज़ किया, सलाम का जवाब मासूम ने इरशाद फरमाया। उम्मे असलम कहती मैंने इमाम से पूछा कि आप अल्लाह के रसूल के वसी हैं। इमाम मुस्कुरा दिए, बग़ैर को जवाब दिए हुए ज़मीन से कंकर को उठाया, ज़मीन से कंकर को उठाया और अपने दस्ते इमामत में लिया और उसको बिल्कुल पाउडर में तब्दील कर दिया। جتنے ہاتھ رسول خدا کے نرم اتنے ہاتھ امیر المومنین کے نرم، مگر جب اعجاز دکھانے پر آئے تو نرم ہاتھوں سے پتھر کو پیس دیتے ہیں۔ یہ وہی تو ہاتھ ہیں جو کبھی سوکھی روٹی توڑتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہوں دیکھنے والے کہ کیسے ان ہاتھوں سے روٹی ٹوٹے گی، اور کبھی دو انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ لیتے ہوں تو وہ بھی علی ہیں اور یہ بھی علی ہیں، دو انداز ہیں میرے مولا کے۔ کبھی ہاتھ اتنا نرم ہے، اتنا نرم ہے، کبھی ہاتھ اتنا سخت ہے۔ بچپن میں جس نے کلے اجدر کو چیر دیا، اتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، اور صرف چیرا نہیں ہے بلکہ جب جناب فاطمہ بنت اسد دوڑ کے قریب آئی ہیں تو عجیب منظر دیکھا کہ بچے نے ایک ہاتھ اژدہے کے منہ میں دیا ہوا ہے اور ایک ہاتھ اژدہے کے سر میں رکھا ہوا ہے، اور انگلیاں بچے کی اژدہے کے سر کے اندر پیوست ہیں۔ اتنا نرم ہاتھ۔ اور قبلہ اب اژدہے کو تو پہچان لیں، صلوات پڑھے محمد والے، انگلیاں اژدہے کی کھوپڑی کیسی ہوتی ہے، کتنی سخت ہوتی ہے، اور انگلیاں گڑی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو وہ انگلیاں نکالنی پڑی، اژدہے کے سر سے بچے کی انگلیاں نکالنی پڑی، اور نکال کے فرمایا کأنک حیدر، بیٹا تو تو حیدر ہے۔ تب سے علی کو حیدر کہا جانے لگا، اس لیے جب کبھی میدان میں آتے تھے اپنے آپ کو علی نہیں کہتے تھے، اپنے آپ کو حیدر کہتے تھے۔ کوئی مسجد میں آئے تو علی ہیں، میدان میں آئے تو حیدر۔ تلوار پڑے محمد، ام اسلم امام کے پاس، امام نے کنکر اٹھایا، پتھر اٹھایا، اسے پیس دیا، پیس کے اسے آٹے کی طرح گوندھ دیا، اور اپنی انگشتری مبارک سے مہر امامت لگا دی، لے جاؤ، ام اسلم کو دے دیا۔ ام اسلم یہاں سے نکلی، کہتے ہیں ابھی نکلی کہاں تھیں، اسی گھر میں دیکھا کمسن حسن چلے آتے، سلام کیا امام حسن کو، شہزادے آپ اپنے بابا کے وصی ہیں؟ جی میں اپنے بابا کا وصی ہوں۔ مسکرا کے فرمایا ہاں، اور آگے ہاتھ بڑھا کر کمسن حسن نے اٹھایا زمین سے کنکر کو، اس کو ویسے ہی مسئلہ جیسے جد نے مسئلہ، جیسے اب نے مسئلہ، ویسے خود مشتبہ نے مسئلہ، اور جب مٹی بالکل مٹی مٹی یہ کنکر ہو گیا، اسے گوندا آٹے کی طرح سے اپنے انگشتری مبارک سے مہر امامت کو ثبت فرمایا۔ اب جیسے ہی یہ کنکر لیا، ثبت کیا، ام اسلم نے ابھی پیچھے ہٹی تھی، دیکھا ایک اور ایک سال کم سن چھوٹا شہزادہ۔ اب میں کیا کہوں، گہوارے میں ہے کہ آغوش مادر میں ہے، آگے بڑی سلام کیا کہ آپ اپنے بھائی کے وصی ہیں، صلوات پڑھے محمد والے، امام نے سلام کا جواب دیا، گہوارے سے سلام کا جواب دیا، دست امامت کو بڑھایا، گہوارے سے اٹھایا کنکر کو، ہاتھوں میں پیسا، کہاں رسول کے ہاتھ، کہاں علی کے ہاتھ، کہاں حسن کے ہاتھ، کہاں حسین کے ہاتھ۔ اب تو زمانہ سمجھ لے کہ نہ سن دیکھو نہ سال دیکھو، دیکھو کہ تینت بھی ایک ہے اور خلقت بھی ایک ہے۔ تینت بھی ایک، خلقت بھی ایک، اللہ اکبر۔ اب چاہے زمانہ کوئی بھی ہو، کہتے ہیں پھر یہ خاتون زندہ رہیں، چوتھے امام تک پہنچی، اور چوتھے امام کو سلام کر کے کہتی کہ آپ اپنے بابا کے وصی ہیں۔ امام نے مسکرا کے سلام کا جواب دیا، کنکر اٹھایا، مٹی بنایا، گوندا، اور اپنی انگشتری مبارک سے مہر لگا دی۔ یہاں تک کہ یہ خاتون کا سلسلہ کہتے ہیں نسلن بعد نسلن منتقل ہوا. اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ جو میری طرح کا کام کرے میرا وصی ہوگا، جو میری طرح کا تمہیں کام کر کے دکھائے وہ میرا وصی ہوگا. اللہ اکبر. اب وصی وہی ہوگا جو مثل محمد ہوگا، معجزات میں مثل محمد ہوگا، ورنہ معجزہ رسالت اور ہے، معجزہ امامت اور ہے، لیکن حقیقت معجزہ تو ایک ہی ہے. اس لیے کہ انا اولنا محمد و انا اوسطنا محمد و انا آخرنا محمد و انا کلنا محمد کا جملہ تا قیام قیام تک کے لیے سب کے سب محمد ہے. کبھی انداز ایسا کہ کوئی سائل میرے مولا کی بارگاہ سے پلٹ کے واپس نہیں گیا. معجزہ علمی ہو کہ معجزہ عملی، امام کا دربار، امام کی بارگاہ بڑی قریب و سخی تھی. اتنا حسین چہرہ تھا، اتنا جمال تھا میرے مولا کے چہرے مقدس پر کہ جب رات میں کوئی امام کے پاس بیٹھتا تھا تو چراغ کی حاجت نہیں ہوتی تھی. کل کا عنوان الگ تھا، چراغ گل کرنے والا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کل کچھ اور کہا گیا آج کچھ اور کہتے ہیں. چراغ مادی اور ہے، چراغ نور اور ہے، سراج منیر اور ہے، چہرہ امام اور ہے، تاک میں رکھا ہوا چراغ اور ہے. لباس بشریت میں آئے تھے اس لیے کھانا بھی کھاتے تھے، اگر لباس بشریت میں نہ آتے تو کھانا ان کا محتاج ہے، یہ کھانے کے محتاج نہ تھے. لباس بشریت میں آئے تھے اس لیے پانی بھی پیتے تھے، لباس بشریت میں نہ آئے ہوتے تو پانی ان کا محتاج تھا، یہ پانی کے محتاج نہ تھے. لباس بشریت میں آئے تھے اس لیے لباس زیب تن کرتے تھے اور طریقہ انسانوں کو سکھاتے تھے، اگر لباس بشریت میں نہ آئے ہوتے تو لباس ان کے محتاج تھے، یہ لباس کے محتاج نہ تھے. ارے یہ چاہیں تو جنت سے لباس درزی سی کے لے آئے. کر دوں، کبھی اگر کوئی مولا کا نام لے کے نعرہ لگائے تو برا نہیں مانا کیجئے، اس لیے کہ اگر نعرہ لگانا اہل ایمان اور نمازی حضرات چھوڑ دیں گے تو پھر یہ بے نمازیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. علی تو آپ کا علی ہے. میں نے آج خطبہ جمعہ میں بھی جملہ استعمال کیا تھا، پھر استعمال کر رہا ہوں کہ اگر ماتم کی صفوں سے نمازی نہ نکلتے، اگر ماتم کی صفوں کو چھوڑ کے نمازی نہ نکلتے تو آج ماتم کی صفوں میں کوئی نماز کے خلاف جملہ کہنے والا نہ ہوتا. دیکھیے میں نے تو جو تربیت حاصل کی ہے تو انجمن ماتمی انجمن کی بات کر رہا ہوں. اس انجمن میں میرے والد بھی تھے، میں بھی تھا، اور محلے کے تمام بزرگ انجمن کا حصہ تھے، جن کے یہاں پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے وہ بھی انجمن کا حصہ تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے ہم جیسے بچوں کو یہ موقع نہیں ہوتا تھا کہ کوئی غلط نعرہ لگا دیں، کوئی غلط جملہ کہہ دیں. جب سے آپ نے انجمن کو آزاد چھوڑا کہ یہ تو نوجوانوں کا کام ہے، بچوں کا کام ہے، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں جب تربیت کرنے والے نہ رہیں گے؟ تو پھر جو بچہ جو کہہ دے سلوات پڑھے محمد والے محمد. تربیت کا مسئلہ ہے قبلہ، ساتھ ساتھ رہیے، بچوں کے ساتھ رہیے، جوانوں کے ساتھ رہیے، نوجوانوں کے ساتھ رہیے. اور چونکہ ہمارا عنوان آگے بڑھتے ہوئے، اب کل ہم نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ عراق کے موجودہ حالات کے حوالے سے پریشانی کچھ ظاہر ہوئی تھی، الحمدللہ رب العالمین اس پریشانی کو سارٹ آؤٹ کر لیا گیا، اور حکومت عراق نے بہت اچھے طریقے سے तमाम जायज़ मुतालबात मानते हुए इराकी वज़ीर आज़म की तकरीर और अब तमाम मामला सेटल डाउन हो गए, ज़ाहिरीन से मुज़ाकरात हो गए, जो शर पसंद थे वो कानून के हवाले हो गए, जो इस्तेमाल हुए बाखबर हो गए, जो वाकई परेशान थे उनकी परेशानियों का हल निकाला। और आज इराकी वज़ीर आज़म ने 1000 सरकारी मुलाजमीन को करप्शन और रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में उनके अहदों से खारिज किया है। आओ पाकिस्तान के हुक्मरानों देखो, अगर कोई इतना करीब हो रोज़े इमाम हुसैन से तो चाहे अब्दुल महदी ही क्यों ना हो। करप्शन के मामलात पर 1000 अफराद को उनकी नौकरियों से अलग होता क्या है? क्या गरीब इंसान किसी ऑफिस में गया काम कराने के लिए, ऑफिसर ने रिश्वत मांग ली तो अब परेशान गरीब आदमी हुआ, पैसे कहाँ से दे जो रोज़गार नहीं है, रोज़गार है तो बहुत महंगाई है तो पैसे कहाँ से दे, परेशान होकर रोड पर आ गया तो हल निकाल लिया गया। मैं कहता हूँ कितना अरब डॉलर डूब गया, 40 कल भी सुरखरू था और आज भी सुरखरू रहेगा, इसलिए कि यजीदियत जो कहीं मुँह छुपाए बैठी है, खुदा का डर नहीं उसको, हुसैन का डर है। जिंदाबाद, सलामत रहिए, शाद आबाद रहिए, और बहुत से मसाइल दुआओं से हल हो जाते हैं। कल की मजलिस से लेकर आज की मजलिस तक दुआ लगी ना, खुदा साया कायम रखे महाराजे उस जम का। हमारे उलमा हमारे सरों के ताज हैं, शियत की ऐसी पहचान है कि जब मुश्किल शियत पर आती है, अंजुमन पे नहीं, मुझ अकेले फर्द पे नहीं, जब शियत पर मुश्किल आती है तो जो बुजुर्गान हैं साहिबान इल्म वो ही आगे बढ़ते हैं। वरना तलाश कीजिए कि वाकई शैतान दुश्मन कितना चालाक है, और उसकी चालाकियों पर आइए मैं आपकी खिदमत में नाम लिए बगैर, क्योंकि मेरा तरीक़ेकार नहीं है कि मैं नाम लेकर जवाब दूँ। किसी साहब ने जो अपने आप को मुफ्ती कहलवाते हैं, इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत ज़्यादा हिर्ज़ा सराई की है, और मसला वही वाला है, कसरत इज़्दिवाज का जी, 120 शादियाँ की थी, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का 120 नहीं सही 100 की होंगी, 100 ना सही 90 की होंगी। और इसी पर बात करते करते अजीब ज़माने के जालिम सितमगर लोग हैं कि जो आले मोहम्मद की शख्सियात पर ये समझते कि शायद धूल उड़ाने से शख्सियात पर धूल जम जाएगी, अंधे हुए हैं, अगर कोई चांद को देखकर लो आप उस तरफ डाले तो अपने मुंह पर ही आता है। अब आइए तारीख पर निगाह करते हुए खाली दो जुमले आपकी खिदमत मुकद्दस में। पहली बात तो ये कि रिश्ता इज़्दिवाज खुदा का बनाया हुआ ऐसा रिश्ता है जो उसने सबसे पहले खुद बनाया, कायनात का सबसे पहला रिश्ता अब्दुर माबूद के रिश्ते के बाद, ख्याल रहे अब्दुर माबूद के रिश्ते के बाद सबसे जो पहले रिश्ता खुदा ने बनाया वो था हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के दरमियान, और दोनों को क्या करार दिया, ज़ौज और ज़ौजा। तो तारीख़ अंबिया में अंबिया की अज़वाज के बारे में बात कीजिए तो अज़वाज मुख्तलिफ मिलेंगी और एक से ज़्यादा भी मिलेंगी, और ऐसी वैसी मिलेंगी کہ کہیں لائق تعریف ہو گئیں اور کہیں سورہ تحریم نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. کیا شروع کی آیات پڑھیے کیا آخری آیات پڑھیے, جب کبھی کوئی آپ سے بحث کرے تو سورہ تحریم کافی ہے. اگر تحریم سمجھ لو تو پیغمبر کے ازواج کے مسائل خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. لیکن حضرت لوط کا مسئلہ, حضرت نوح کا مسئلہ, عجیب انداز, جناب ابراہیم کی ازواج مطہرہ کیا شان تھی ان کی, ایک جناب ہاجرہ ایک جناب سارہ. تو کثرت ازدواج پر یہ الزام کی بنیاد کیا بنی؟ آپ چاہیں گے بنیاد پڑھی جائے, بنیاد پڑھتا ہوں, سلوات پڑھے ہوں ہمارا. اور بنیاد پڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے بعض کتابوں میں حالات و واقعات بنو امیہ بنو عباس کے حوالے سے کچھ ضعیف روایتیں بھی شامل ہیں. یاد رکھیے گا, جیسے خدیجہ طاہرہ کی عمر مبارک 40 سال, جیسے اس کے علاوہ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ. لیکن جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے گئے اور جیسے جیسے قلم آزاد ہوتے گئے, ویسے ویسے آج کے موجودہ دور کے علماء نے بہت سی روایات کو ان تمام کتابوں سے الگ کر دیا اور وضاحت کے ساتھ الگ کیا کہ راوی کون تھا اور روایت کا ضعف کیا ہے. اب میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر 120 ازواج کا تذکرہ کیا جائے تو پوچھئے مفتی صاحب سے کہ قبلہ 120 ازواج کے خاندان تو بتائیے کس خاندان سے تھی, قبیلہ کون سا تھا, علاقہ رہائش کا کون سا تھا, یہ تو بتا دیجئے. چلیے یہ سب باتیں نہ صحیح تو یہ بتا دیجئے کہ ان کے نام کیا تھے. کہتے ہیں جملہ بہت پرانا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو جھوٹ کو بیان تو کر دیا, پاؤں نہیں ہے کہ کوئی حوالہ نہیں ہے. اور اگر حوالوں کی بات کریں تو کیا حوالے ہیں, یہ سب ایسے ویسے ہیں کہ سب کے سب اپنے اعمال کے حوالے ہیں. آل محمد کی شخصیات کا حوالہ یا قرآن مجید ہے یا خود حدیث ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پوچھتا ہوں مفتی صاحب بتا دیجئے کہ آیہ تطہیر میں حسن شامل ہے کہ نہیں, اگر شامل ہیں تو جس کے لیے خدا طہارت کا اعلان کرے اس کے لیے یہ گھٹیا جملے استعمال کرتے ہوئے موت نہیں آ جاتی؟ یا تاریخ لکھنے والا کہ آیہ تطہیر سے واقف نہیں تھا؟ بہت چھوٹی سی مثال, ہوا کیا ہے, ہوا یہ کہ شام کے جہلا بکے ہوئے افراد اتنے جاہل کہ جنہیں یہ تمیز نہ ہو کہ اونٹنی اور اونٹ میں کیا فرق ہوتا ہے, جنہیں یہ تمیز نہ ہو کہ جمعے کی نماز بت کو نہیں ہو سکتی, جنہیں یہ تمیز نہ ہو کہ آگے کھڑا ہوا ہے یا کھڑی ہوئی ہے, اور بڑے ادب سے نماز پڑھ لیں. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے مکتب سے وابستہ کیا کہ 2 رکعت نماز بھی بغیر سند دیکھے نہیں پڑھتے. اگر امام جماعت ایسا تو امام وقت کیسا ہوگا؟ سلوات پڑھے محمد. ایک سو بیس کے نہ صحیح, 100 کے نام بتا دو, 100 کے نہ صحیح, 90 کے نام بتا دو. اچھا کس کس زمانے میں نکاح ہوئے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نزدیک حسن کی عمر کیا تھی؟ مولا جی عمر کتنی تھی؟ 50 ہجری میں شہادت ہے, اور ہجرت کے दूसरे बरस में या तीसरे बरस में आपकी आमद है, तो 47 बरस या इख्तलाफ हो तो 48 बरस, इससे ऊपर नहीं। 48 बरस के सिन में 120 शादियां, इल्जाम भी इतना घना होना। और फिर जुमला आपकी खिदमत में और अर्ज कर दूं, कहते हैं उनको शौक था निकाह करने का। मैं नकल कुफ्र कर रहा हूं, ये अल्फाज अदा करते हुए मेरे अल्फाज पे गौर रखिए, मेरे अल्फाज नकल कुफ्र हैं और नकल कुफ्र पर इल्जाम कुफ्र नहीं होता। शादियों का बड़ा शौक था, दूसरा इल्जाम तलाक बहुत दिया करते थे। तो क़िबला यह तो बता दें वो खानदान वो कबीले कैसे थे। मुफ्ती साहब आपकी बेटी अगर हो, आपकी बेटी हो, किसी के निकाह में दोगे ऐसे के जो तलाक बहुत देता हो? अपनी बेटी देने को तैयार नहीं हो तो कौन से खानदान थे कि जो अपनी बेटियों को हसन के निकाह में देने में मुसिब थे? पता चला कुछ तो था कि जो देने वालों की सोच थी कि दे देकर रिश्ते बना लो। तो लाख वाला वाला कुव्वत, अब आइए असले तारीख पर आइए। तो यजीद पलीद ने एक औरत को देखा, औरत का नाम है हिंद, और देखकर उस पर आशिक हो गया। कुछ बातें मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं मिंबर के आदाब के लिहाज से शायद कोई जुमला ऐसा इस्तेमाल न कर जाऊँ जो मुनासिब न हो। आशिक हो गया, मजबूर बयान कर रहा हूँ। बहुत कुछ साहिब जमाल हो गई, आशिक हो गई। और आशिक होने का नाम क्या है इसका? हिंद। मजबूरी के पेश आई कि हिंद शौहरदार थी, उसके शौहर का नाम था अब्दुल्ला इब्ने आमिर हिंदी। क्या नाम था? अब्दुल्ला इब्ने आमिर हिंदी। खातून का नाम है हिंद। कहते हैं मौर्रखीन कि यजीद मचल गए कि मुझे इससे शादी करना। अब अपने नाम निहाद अब्बा हुजूर के पास पहुंचा, कहने लगा मुझे तो इससे शादी करना है। किससे शादी करना है? कहें से। ख्याल रहे ये वो हिंद नहीं है जो आपके जहन में आ रही होगी। मैं जो बयान कर रहा हूँ ये हिंदुसरी है, हो सकता है कोई इश्तबा आपके जहन में आया कि हिंद इब्ने बिनते अब्दुल्ला नहीं हुआ लगे। इसकी शादी यजीद से हो गई और इससे बेटा पैदा हुआ मुआविया सानी हुआ अलग है, ये हिंद अलग है। मुआविया ने यजीद के बाप ने कहा बेटा ये तो बड़ा मुश्किल मसला, क्या मुझे नहीं मालूम, कुछ कर, अच्छा कुछ करता हूँ। अब्दुल्ला इब्ने आमिर हिंदी को बुलवाया शाम, और बुलवाने के बाद उससे कहा कि मैं तुम्हें बसरा की गवर्नरशिप देता हूँ, बसरा की गवर्नरशिप देता हूँ, और मैं तुम्हारी बेटी, मैं अपनी बेटी रमला का निकाह तुमसे कर देता हूँ। कौन कह रहा है? मुआविया। मैं अपनी बेटी रमला का निकाह तुमसे कर देता, मगर मगर क्या करो, जुमला अनकम्प्लीट छोड़ दिया गया। अब्दुल्ला के दिल में लालच पैदा हुआ कि गवर्नरी मिल रही है तो रुकावट कौन सी आ गई, दामादी मिल रही है। पूछा मगर, मगर क्या मतलब, क्यों क्यों रुक गए, मैं हाजिर हूं। अब मुआविया ने बड़ी चालाकी से काम लेते हुए कहा मगर तू पहले से शादीशुदा है, अब भला मैं अपनी बेटी को तेरे निकाह में कैसे दूं। मैं समझता हूं मुफ्ती साहब, मुआविया तक का जहन ऐसा था कि अगर किसी के घर में कोई पहले से मौजूद हो तो अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेजता था। बात वाजे हो रही नहीं हो रही? और अब अब्दुल्ला ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी फारिग करता हूं उसको, हिंद को अभी फारिग करता हूं। दो गवाह बुलाए, दरबारी मुल्ला गवाह बुलाए, तलाक 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 हो गई। शाही फरमान नामा तलाक का लिखवाया गया और स्टैम्प करके बाकायदा तारीख का जुमला है भेजा, अबू हुरैरा गया। ऐसे काम में तो घर बड़ी जिम्मेदारी थी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, ये तो इसके हाथ भेजा अबू हुरैरा के हाथ। अबू हुरैरा चला इस खत को लेकर। ये वाकया शाम और कूफे या मदीने के दरमियान का वाकया है। शाम से खत चला है, बास कहते हैं मदीने का वाकया है, बास कहते हैं कूफे का वाकया है, लेकिन है ऐसा शहर जहाँ इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम रहते हैं। अब जब अबू हुरैरा शहर में पहुंचा, इमाम की मुलाकात इससे हो गई। इमाम ने पूछा अबू हुरैरा क्या ले जा रहे हो? अबू हुरैरा बहुत सीधा साधा आदमी जा रहा हो, कह ये ले जा रहा हूं, खत दिखा दिया। क्या ले जा रहे हो? कहा हिंद के पास। और उस खत के साथ ये था, खत तो था तलाक की खबर थी और खत के अलावा पेशकश थी हिंद के लिए कि इद्दत गुजार लो तो यजीद से तुम्हारा निकाह करवा दिया जाए। ये पेशकश खत के अलावा थी, खत खबर थी, तलाक थी, पेशकश थी अगले निकाह की यजीद के साथ। इमाम ने रोका उसे, उसने पूरी बात उगल दी। अरे हुज्जत खुदा, अगर किसी से बात उगलवाना चाहे तो पत्थर भी बोलते हैं, इसकी क्या हैसियत है। इरशाद फरमाया अच्छा जा रहे हो तो एक मेरा भी काम कर दो। क्या मतलब? कहा जब तुम हिंद के सामने ऑप्शन, हिंद के सामने रखो ख्वास्तगारी का पैगाम यजीद के हवाले से, तो कहना कि एक ख्वास्तगार रसूल का नवासा भी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, ठीक है? बड़े मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूँ ताकि बड़े इत्मीनान से आपके जहन में महफूज हो जाए। जा रहे हो तो जब तुम उसकी बात पेश करोगे तो मेरी बात भी पेश कर देना। अबू हुरैरा चले गए, हिंद के घर पहुंचे, पहले तलाक की खबर सुनाई कि तुम्हारे शौहर ने शाम जाके तुम्हें तलाक दे दी है, तब तो फारिग हो गई और रोई धोई होगी कि अब खुशखबरी है कि यजीद ने और यजीद के बाप ने तुम्हारे लिए ख्वास्तगारी का पैगाम दिया है यजीद से निकाह करवाने के लिए। और दूसरा पैगाम ये है कि फर्जंद रसूल ने भी तुमसे ख्वास्तगारी के लिए दरख्वास्त की है। अब ये तुम में मुनसर है। इमाम के अल्फाज ये थे, ये फैसला हिंद का होगा कि किसे कबूल करती है किसे रद्द करती है। अजीब जुमला है तारीख का, सुनेंगे। हिंद ने मशवरा लिया अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा तुम बताओ इन दोनों रिश्तों में से कौन सा बेहतर रिश्ता है। वैसे कितना ही कुछ बोलते हो मगर मैं इतना तो कहूंगा अबू हुरैरा के नजदीक यजीद बदतर था, हसन बेहतर थे। आज के मुफ्ती को समझ में नहीं आ रहा, अबू हुरैरा ने हिंद को मशवरा दिया, अगर मुझसे मशवरा पूछती हो तो हसन तो फर्जंद रसूल हैं, उनका तो क्या कहना। हिंद ने फैसला कर लिया। अब ये ऐसी डिप्लोमेसी थी, वहां से यजीद और माविया की कार्रवाई, यहां से इमाम की कार्रवाई। हिंद ने फैसला कर लिया कि मुझे तो निकाह करना है तो इमाम हसन से करना है, और ये खबर इमाम तक पहुंची, इद्दत मुकम्मल हुई, इमाम के निकाह में आ गए। क्योंकि फासले इतने थे कि खबर पहुंचते पहुंचते दिनों लगते थे, हफ्तों लगते थे, ये खबर वापस वहां तक पहुंची तो कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। अब्दुल्ला इब्ने आमिर को ना बसरा की हुकूमत दी और ना बेटी रमला का रिश्ता दिया, उसको तो बाहर निकलवा दिया। रोता पीटता खसरत दुनिया वाला खर, बसरा की हुकूमत भी गई, नेक सीरत बीवी हिंद भी गई, खाली हाथ हो गया। रोता पीटता हुआ आया मदीने मुनव्वरा, और फिर इमाम हसन मुस्तफा की बारगाह में चला आया। इमाम ने बड़ी मोहब्बत से बुलाया, इरशाद फरमाया, क्या बात है, खैरियत तो है, पूरा वाकया बयान किया। कब मेरे साथ तो ये हाथ हो गया, हादसा हो गया। फरमाया तुम मत घबराओ, मैंने तुम्हारी अमानत को अपने हरम में बना दी है। आज उस नुक्ते पे हम पहुंच रहे हैं जो इमाम पे इल्जाम लगते हैं, मैंने तुम्हारी अमानत को अपने हरम में पनाह दी है, और शादी करने का मकसद उसे अपनाना नहीं था बल्कि तुम्हारी अमानत को महफूज करना था। लो हम तलाक दिए देते हैं, और आप फिकी मसला आप जानते हैं कि अब इद्दत नहीं होगी। मैं इससे आगे जुमला नहीं कहूँ, मैं सलवात पढ़े मोहम्मद वाले हिंद को आज़ाद किया, अपने शौहर के निकाह दोबारा निकाह में गई। यहाँ तो फैमिली बच गई टूटने से ना, वहाँ क्या हुआ। बनो उमैया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि हसन के तो मिजाज ये शादियाँ करते हैं तलाक देते हैं। चला वहाँ से है, बस मैंने आज की हद तक आपकी जहमत को तमाम किया। आज तक इमाम मासूम पर यह जुमला इस्तेमाल किया जाता है। अब इस खातून का नाम इमाम की अजवाज में लेंगे, मगर किस उनवान से लेंगे, उनवाने ज़ौजियत में नहीं, उनवाने तहफ़्फ़ुज़ में। अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा साहिब मेरा मौला, जब वज़ू फरमाते थे चेहरे का रंग फक हो जाता था, जब इबादत के लिए खड़े होते थे तो मिसले बैत की तरह कांपते थे, इतना बड़ा जाहिद और आबिद मेरा मौला, और इतना गिरिया करते थे। गिरिया करने वालों में, सबसे बड़े गिरिया करने वालों में खौफ खुदा और ज़ोहद की बुनियाद पर रावियों ने इमाम का नाम लिया है। और बस जब बात गिरिए की आई तो एक गिरिया वो है जो आप खौफ खुदा में करते हैं। जब कभी आपको ऐसा माहौल दिखाई दे जहां आपको अपने आप को बचाना हो, खुदा से दुआ मांगे, और जब बच जाएं तो आंसू बहाकर शुक्रिया अदा करें। लेकिन रोने वालों, एक आंसू वो जो आज شب شہادت سکینہ بنت حسین ہے. آج کی شب شب غربت ہے، شب تعزیت ہے. سمجھ میں نہیں آتا مصائب شروع کہاں سے کروں، مکمل کہاں پہ کروں. بس ایک جملہ میرے مجھے آخری امام پہ یاد آتا ہے، کسی نے زمانۂ غیبت کبریٰ میں امام کی زیارت کی، دیکھا سر جھکائے ہوئے، زانوں پہ سر رکھے ہوئے، زاروں قطار روئے چلے جاتے. پوچھا مولا سے، مولا اچانک کس کی یاد آ گئی؟ فرمایا مجھے اپنی جد ماجدہ فاطمہ زہرا کی یاد آ گئی. کہ میں سوچتا ہوں کہ اتنی مصیبتوں کے لیے 18 سال کا سن تھا کہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. بس میں سوچتا ہوں مولا کہ 4 سال کا سن تھا اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. اللہ اکبر. جملہ برداشت کریں گے، رسول خدا کے بعد شہزادی پر ظلم ڈھائے گئے تھے اور شہزادی کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ سیدہ پہچانی نہیں جاتی تھی، پیشانی پر رومال بنا رہتا تھا، ہاتھ میں عصا رہتا تھا، ایک ہاتھ پہلو پر رہتا تھا. جیسے سیدہ نہیں پہچانی جاتی تھی نا، ایسے سکینہ نہیں پہچانی جاتی تھی. وہ پھول سی بچی کم لا گئی، چہرے پہ اتنا ورم رہتا تھا کہ بچی کی آنکھیں پوری کھل نہیں پاتی. اجرکم اللہ، پیروں پہ اتنا ورم تھا کہ بچی سے چلا نہیں جاتا تھا. کبھی پھوپھی کو دیکھتی تھی گود میں لے لے، کبھی چچی کو دیکھتی تھی گود میں لے لے، کبھی مگر کیا کریں، بیویاں سکینہ کو گود میں کیسے لے کے ہاتھ پسے گھر پر بندے ہوئے تھے. اجرکم اللہ، کبھی بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر روتی تھی. اللہ اکبر. رونے والوں، بہت سخت مصیبت ہے، ذرا غور کیجیے گا. جب شہزادی کونین کے سر مقدس سے بابا کا سایہ اٹھا ہے نا، تو شہزادی نے بہت گریہ کیا، بہت روئی. 75 دن روئی ہیں یا 95 دن روئی ہیں شہزادی؟ محلے والے آ کر مولا سے کہتے تھے کہ صبح کو رو لیں، بیوی سے کہیے شام کو رو لیں، کم از کم ایک ٹائم کا رونے کا تو عنوان ملتا تھا. اے سکینہ، جب باپ کا نام لیتی تھی تماشے والے تھے، بچی گھبرا کے کہتی تھی اچھا شمر مجھے نہ مار، میں بابا کا نام دی. اجرکم اللہ. رونے والوں، عجیب انداز ہے بچی کا. میں کہوں گا شہزادی آپ کے سر سے بابا کا سایہ اٹھا تھا، تو کچھ دنوں کے بعد آپ کو بابا کی قبر پہ جانے کا موقع تو مل گیا. آپ بابا کی قبر پہ چلی تو گئی. آئے سکینہ، قبر حسین پر بھی نہ جا سکی. اجرکم اللہ. رونے والوں، ایک یتیمی یہ ہے جو سیدہ کی یتیمی ہے. ایک وہ یتیمی جناب زینب کبریٰ کی تھی نا، جب مولا کو زخمی کیا گیا، سر مقدس پہ ضربت ماری گئی اور مولا کو اٹھا کے لے کے چلے ہیں گلی میں مبارک پر، اٹھا کے لے کے چلے ہیں، اور جب دروازے کے قریب پہنچے تو امام فرماتے ہیں بیٹا حسن میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں. کہ بابا کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے دوستوں کے کانوں میں چلی جائے. رونے والے، پھر امام فرماتے ہیں بیٹا مجھے میرے قدموں پہ اٹھا، میرے قدموں پہ کھڑا کر دو، میں خود چل کے جانا چاہتا ہوں. کہ بابا کس لیے؟ کہ بیٹیوں نے آتے ہوئے دیکھا قدموں پر، اب اچانک ہاتھوں پہ دیکھے. بولا بیٹیوں کا بڑا خیال تھا نا، بیٹیوں نے بڑی خدمت کی، مولا کے چہرے کا خون دھو دیا، پیشانی پہ پٹی باندھی بابا کے زخم پر. آئے سکینہ، اپنے
मेरे बाबा के सर को खूना लूना देखती रही, वहां मुसीबत आवा मोहम्मद। और रोने वालों, जुमला बर्दाश्त कर सकोगे, बच्ची ने कितने दिन और जिंदा रही बाबा के बाद, इतना कम जिंदा रही कि चैलूम भी ना कर सकी, इतना कम जिंदा कि बच्ची बाबा का चैलूम भी ना कर सकी। अरे जिंदा ने शाम की दीवारें ऐसी थी कि डर लगता था कहीं दीवार कैदियों पे गिर ना पड़े, इतनी खस्ता दीवारें थी, छत नहीं थी, रात में आसमान दिखता था, दिन में सूरज की गर्मी जलाती थी, जब परिंदों को जाते हुए देखती थी पूर्ति भूमि, अम्मा ये परिंदे कहाँ से आ रहे कहाँ जाते हैं, वर्मा की बेटी शाम हो गई परिंदे आशियानों को लौटते, एक कलेजा कट जाता था पुपी अम्मा, वो दिन भी कभी आएगा जब हम भी वतन जाएंगे। अरे वो दिन कब आया जब रिहाई का हुक्म मिला, सकीना दुनिया में रहती। अजरकुम अल्लाह कहते हैं ऐसा कैदखाना था कि जहाँ से बाहर का इलाका दिखाई देता था। कहते हैं यार कैदखाने तीन तरह के अलग अलग बयान हुए, एक कैदखाना ऐसा भी था जहाँ से बाहर का मंजर दिखाई देता था, बच्ची देखती थी बाहर गली में कि कोई बच्ची अपने बाप के साथ जा रही है, कोई बच्ची बाप की गोद में जा रही है, साख्ता अपने बाबा को याद करती थी, बाबा बाबा नाराज हो गए आते क्यों नहीं, बाबा अच्छा सकीना कोई ख्वाहिश बजा, बाबा सकीना आते कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं करेगी, बाबा एक मरतबा तो मुझे गोद में आके ले। बाबा सकीना बहुत थक गई, कभी बच्ची अपना मरसिया पढ़ती थी बाबा से, कचरी आबती आबती बाबा मेरे बाबा, बाबा किसने मुझे कम सीनी में यतीम कर दिया, बाबा किसने आपके गले के रगों को काट दिया। अरे आए सकीना अपना मरसिया पढ़ती जाती थी, रोती जाती थी, बस दो तीन जुमले सुनना रोने वालों। कहते कटे हुए सरे हुसैन को जिंदा ने शाम में भेजा गया है, कटे हुए सरे हुसैन को जिंदा ने शाम में भेजा गया, और जैसी बच्ची ने बाप का सर पाया, रोने वालों इस तरह से बाप का सर पाया कि बच्ची बाबा के सर को लेके हैरान थी, करे तो क्या करे, कैसे बाबा के सर को सीने से लगाए, कभी दाएं तरफ रखती थी अपने जानू पर, कभी बाएं तरफ रखती थी अपने जानू पर, कभी अपना मुंह बाबा के सर पर रखती थी, जैसे कोई मुर्गे बिस्मिल तड़पता हो। समझने जुमला उलमा ने लिखा है, जैसे कोई ज़िबह किया हुआ परिंदा तड़पता हो, ऐसे सकीना बाप के सर को इस तरह तड़पती थी कि बच्ची को समझ में नहीं आता था कि बाप के साथ किस तरह इजारे मोहब्बत करे। रोने वालों बच्ची ने बाबा के मुंह पर मुंह रखा है, सारा सीरों का कारवां रोता है, हर बीवी रो रही है सकीना की हालत को देखकर, हर बीवी पर याद कर रही थी, इतना गिरिया बुलंद था कि बच्ची के रोने की आवाज दब गई। जब बहुत देर तक महसूस किया कि सकीना के रोने की आवाज नहीं आती, अब जनाब ज़ैनब ने शाना हिलाया, बेटी आओ तुम्हें पुपी सीने से लगा ले। अब जो शाना हिलाया बच्ची का मन का ढलका हुआ था। रोने वालों आखिरी सांस रोने वालों बस एक जुमला सुन लेना, आए हुसैन अजीब इम्तिहान था आपका माना, असर ने दम तोड़ा तो आपकी गोद में तोड़ा, सकीना ने दम तोड़ा तो आपके मुंह पर।
वक्त कबूलियत दुआ है, आपके आंसू सैयदा के लिए, आप रोए अपने लिए हैं, आपकी कब्र के लिए आपकी कब्र के लिए सूरों से कयामत आपके शफात का जरिया बनेगा। अज़ादार हो यतीम, यतीम हुसैन है ना, और यतीमों की दुआ जल्दी कबूल होती है। शहजादी से इतना कह दो, शहजादी अपने बाबा से सिफारिश कर दीजिए। मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर बीवी एक मरतबा बाबा से कहे, बाबा ये मेरे मातमदार बेटे, बाबा ये मेरे पुरसा देने वाले बेटे, बाबा इनकी सिफारिश कर दीजिए। अगर शहजादी अपने चचा से कह दे, तो चचा से बाबुल हवाई की मुश्किल हल हो जाएगी। शहजादी अपने भैया अली अकबर से कह दे, शहजादी अपनी दादी फातिमा जहरा से कह दे, शहजादी अपने दादा अली मुर्तजा से कह दे। रोने वालों वक्त कबूलियत दुआ, खुदाया यतीम हुसैन की मुसीबतों पर गिरिया करते हैं और पुरसा पेश करते हैं। आका हुसैन आपको आपकी बेटी का पुरसा, आए हुसैन आपको बेटी का पुरसा, मौला पास आपको आकाजादी का पुरसा, मौला अली अकबर आपको आपकी बहन का पुरसा, ए नन्हे से मुजाहिद अली असर आपको आपकी बड़ी बहन का पुरसा, या सैयदा फातिमा जहरा आपको आपकी पोती का पुरसा, या अली मुर्तजा आपको आपकी पोती का पुरसा। परवरदिगार हम सबको बीबी सकीना और रुकैया के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा, परवरदिगार बीबी के रोजे की हिफाजत फरमा, तमाम पर मुश्किलात ज़ाहिरीन की दूर फरमा, वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद था, परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गमे आलिया रसूल के। अब शहजादी के मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम मुनतकिम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जिस जिसने बीबी को तमाशा मारा, जिस जिसने बीबी को पत्थर मारे, जिसने बीबी के सामने पानी जमीन में गिराया, अरे जिसके कांटों से गोशरा रहे लुत्फ, जिस तरह दामन में आग लगी, तमाम मजालिम के इंतकाम के लिए अब इमाम मुनतकिम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को ईमान के खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिदार मुहम्मदिन व आलिहिल मंसूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।